بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو نیت کے متعلق چل رہی تھی، خلاصے میں اتنی بات سمجھ لو کہ اعمال کی دو قسم ہیں، اعمال مقصودہ، عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ. جتنے بھی اعمال مقصودہ ہے، عبادات مقصودہ ہے، وہ بالاتفاق حدیث شریف میں داخل ہے، احناف کے یہاں بھی، شوافے کے یہاں بھی. رہے اعمال غیر مقصودہ، تو اس سلسلے میں احناف اس حدیث میں داخل نہیں مانتے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حدیث شریف کے اندر داخل مانتے ہیں. اب دیکھیے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ جو بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اور آپ جانتے ہیں کہ منبر کے اوپر خطبہ دیا جاتا ہے، اسی لیے بعض حضرات نے ایک لطیف توجیہ اس کی یہ کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منبر پر کی حدیث کو، جو خطبہ ہوتی ہے، اسی کو خطبۃ الکتاب بنایا ہے. یہ بھی بعضوں نے ایک لطیفہ اور نقطہ لکھا ہے، اس لیے کہ منبر پر خطبہ ہوتا ہے اور راوی نے منبر کے اوپر جو حدیث سنی ہے، اسی حدیث کو امام بخاری نے خطبۃ الکتاب بنایا ہے. فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا موازنہ نیتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. دوسرا دھیان سے دیکھو، اعمال کا ثمرہ نیت پر مرتب ہوتا ہے، اعمال کا ثمرہ نیت پر مرتب ہوتا ہے. اگر اعمال کی نیت اچھی رہے گی تو ثمرات اچھے مرتب ہوں گے، اور اگر نیت میں گڑبڑی ہو گئی تو ثمرات اچھے مرتب نہیں ہوں گے. یوں بھی کی ترجمہ کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کو نیتوں سے ملا کر دیکھا جائے گا، اعمال کو نیتوں سے ملا کر دیکھا جائے گا. یعنی قیامت کے میدان کے اندر عمل اور نیت دونوں کو آپس میں ملا کر دیکھا جائے گا. اگر عمل کے اندر حسن نیت ہے تو اللہ کے یہاں وہ اجر کے باعث بنیں گے، اور اگر سوئے نیت ہے تو وبال کا باعث بنیں گے. یہ بھی ایک ترجمہ کرتے ہیں. حدیث شریف کے اندر وہ اعمال مراد لیے جائیں گے جو اعمال خیر کہے جاتے ہیں، اعمال شرعیہ کہے جاتے ہیں، اچھے اعمال کہے جاتے ہیں، یہ حدیث شریف میں متعلق مانے جائیں گے. جو چیز شریعت کے اندر مباح ہے، جو چیز شریعت میں خیر اور بھلائی ہے، وہ اعمال حدیث شریف سے متعلق مانے جائیں گے کہ اس میں اگر آپ کی نیت اچھی رہے گی تو اللہ کی یہاں اچھا ثمرہ ملے گا، اچھا ثواب ملے گا، نیکی ملے گی. لیکن جو اعمال فی نفسی ہی برے ہیں، اس کا حدیث شریف سے تعلق نہیں ہے. برے اعمال حدیث شریف کے اندر نیت کے ساتھ جوڑے نہیں گئے ہیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرے، برائی کا کام کرے، اچھی نیت سے کرے، تو اس کی وجہ سے وہ برا اور گناہ کا کام صحیح اور جائز نہیں ہو جایا کرتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے دیکھا کہ بھائی इस मस्जिद के इमाम साहब को, मौज़िन साहब को लॉकडाउन की वजह से मुद्दतों से तनख्वाह नहीं मिली है। चूँकि मस्जिद की आमदनी बंद हो गई, जुमा का डिब्बा बंद हो गया, तो बेचारों को तनख्वाह कई मुद्दत से नहीं मिली है। इमाम साहब, मौज़िन साहब परेशान हैं। तो एक आदमी ने कहा कि चलो मैं इनकी फ़िक्र करूँ, लिहाजा वो गया चोरी करने के लिए कि चोरी करके पैसे लाता हूँ और ला कर के इमाम साहब और मौज़िन साहब की खिदमत अक़दस में पेश कर देता हूँ ताकि बेचारों की तकलीफ़ दूर हो जाए। तो चोरी फ़ी नफ्सी ही हराम और बुरा काम है। अब वो अच्छी नीयत से कर रहा है तो उसकी वजह से वो काम सही और दुरुस्त हो जाता नहीं है। लिहाजा जो आमाल शरअन बुरे हैं, हराम और नाजायज़ है, वो नीयतों की वजह से दुरुस्त और अच्छे हो जाएंगे नहीं। लेकिन एक पहलू और इसमें जहन में रखना। क्या पहलू? कि जो अमल शरीयत के अंदर बुरा है, हराम है, नाजायज़ है, उसमें अगर मुतअद्दद नीयतें शामिल होती है तो गुनाह भी मुतअद्दद हो जाते हैं, वबाल भी मुतअद्दद हो जाता है। जैसे कल बतलाया गया था कि अच्छे अमल में मुतअद्दद नीयत से अजर मुतअद्दद हो जाता है, सवाब मुतअद्दद हो जाता है। इसी तरीके से गुनाह के काम में, बुराई के काम में, नाजायज़ और हराम काम में अगर गुनाह की नीयतें मुतअद्दद होगी तो उसकी वजह से गुनाह और बुराई भी मुतअद्दद हो जाएगी। अब इसकी मिसाल लो, इस मसले की मिसाल के तौर पर एक आदमी चोरी करने, जिना करने के लिए निकला। अब जिना करने के लिए निकला तो जिना फी जाती ही हराम है, नाजायज काम है, गुनाह का काम है। लेकिन जिना के अंदर उसने एक नियत तो जिना, उसी इरादे से चला, दूसरी नियत क्या की? जिस औरत से मैं जिना करूँगा उसकी आबरू रेजी भी मैं करूँगा। बहुत से लोग दुनिया में जिना करते हैं आबरू रेजी करने की नीयत से, कि उसकी इज्जत लूटने के इरादे से करते हैं। वरना ये है कि जिना करना ही था तो किसी बाजारू औरत के पास चला जाता, लेकिन कोई अच्छी औरत की इज्जत लूटने के लिए वो जिना करता है। दो नीयत हो गई, एक नफ्से जिना की और दूसरा आबरू रेजी की। तीसरी नीयत ये करता है कि मैं इस औरत से जिना करके व्हाट्सएप पर जो है उसको वायरल कर दूंगा। जैसे कि आजकल ये भी एक गुनाह फैशन बन गया है कि तन्हाई में जिना करेंगे और उसका वीडियो बना के वायरल करेंगे। तो उसकी नीयत ये होगी कि इस औरत से आइंदा फिर कोई निकाह न करे। जब सब लोगों में उसकी शोहरत हो जाएगी, चर्चा हो जाएगा, तो कोई इस औरत से निकाह करेगा नहीं, कोई उसको अपनाएगा नहीं। ये तीसरी बुरी नीयत हो गई। चौथी नीयत ये हुई उसकी कि जिना के जरिए से हरामी बच्चे पैदा हो गए और वो फसाद मचावे, गुनाह के काम करे, बुराई के काम करे। देख लिया, तो इस आदमी ने एक बुराई का काम किया, जिना का, लेकिन उसमें मुतअद्दद नीयतें की इसने। तो इस मुतअद्दद नीयतों के करने की वजह से वबाल और गुनाह में भी तअद्दुद आ जाएगा। अब इस आदमी को जिना का भी गुनाह, आबरू रेजी का भी गुनाह, तशहीर और फिस्क, फुजूर का गुनाह, और साथ साथ के अंदर उस औरत के लिए ये जज्बा कि आइंदा अब उससे कोई निकाह न करे, ऐसी रेवे वो, और हरामी औलाद पैदा हो और माशरे में हराम बच्चे आम हो, कितनी सारी गलत नीयतें शामिल हो गई। लिहाजा बुरा अमल अगर कोई आदमी अपनी नाअहली से करता है तो उसको मुतअद्दद नीयतों से बचाना चाहिए, क्योंकि मुतअद्दद नीयत उसमें जब शामिल होगी तो वबाल और गुनाह भी उसके अंदर मुतअद्दद हो जाएंगे। تو فرمائے کہ انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى. اب کیا بحث ہے؟ یہ تو نیت کی تفصیلات ہو چکی. یہاں لکل نہیں ہے اس سند کی روایت میں. وَإِنَّمَا لِمْرِئِ اِمَّا نَوَا. اب یہ دو جملے ہیں اور دونوں جملوں کا حاصل بظاہر ایک ہی ہے, اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِمْرِئِ اِمَّا نَوَا, کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے. اب یہ دو جملوں کا مقصود کیا؟ نمبر ایک, بعض شراح کرام نے اس کو تاکید پر محمول کیا ہے کہ جملے اول کے اندر جو مضمون ہے اسی کی تاکید ہو رہی ہے جملے ثانیہ کے اندر, چونکہ یہ مضمون اتنا اہم تھا کہ اس کو دو دو جملوں کے ذریعے تاکید کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت پڑی. گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اعمال کو نیتوں سے موازنہ کر کے دیکھا جائے گا, لہذا تم لوگ اپنی نیتوں کو ٹھیک ٹھاک رکھو, جیسی نیت کرو گے ایسا پھل اللہ کے یہاں پاؤ گے. تو اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر جملے کو تاکید کے ساتھ مقرر بیان کیا گیا. دوسری توجہ, بہت سے شراح کرام نے تاسیس مانی ہے. تاسیس, تاسیس کا کیا مطلب؟ پہلا جملہ کا مضمون الگ ہے اور دوسرے جملے کا مضمون نیا اور الگ ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تاسیس. تو بہت سے شراح کرام نے اس کو تاسیس کے اوپر مانا ہے. اگر تاسیس مانے تو پھر دونوں جملوں کے اندر فرق کیا؟ کیا مطلب دونوں جملوں کا؟ پہلے جملے کا مطلب تو واضح ہو گیا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے, اعمال کو نیتوں کے ساتھ ملا کر کے دیکھا جائے گا, اعمال کا ثمرہ نیتوں کے اوپر مرتب ہوگا. اب دوسرے جملے کا مطلب سمجھو, وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَّا نَوَى. بعض شراح نے ایک مطلب یہ فرمایا کہ دوسرا جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ جتنی جتنی نیتیں تم کرو گے اتنا اتنا تم کو اجر ملے گا. مانوا, جتنی جتنی نیتیں کرتے جاؤ گے اتنے اتنے اجر اور ثواب تم کو اللہ کی طرف سے ملیں گے. گویا دوسرے جملے کا مقصد ہے تعدد نیت کے اوپر تعدد اجر کو بتلانا, یہ ہے تاسیس. تعدد نیت پر تعدد اجر کو بتلانا. نمبر دو, بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ دوسرے جملے کا مطلب کیا ہے, نیتوں کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی. شریعت کے اندر دو طرح کے اعمال ہے, بعض اعمال کے اندر نیابت ہوتی ہے, بہت سے اعمال میں نیابت ہوتی نہیں ہے. تو نیت ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی طرح کی نیابت کی گنجائش نہیں ہے. تو وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَّا نَوَى, اس دوسرے جملے سے یہ بتلانا ہے کہ انسان جو خود نیت کرے وہی معتبر, اس کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی نیت کرے تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. کہ بھائی دیکھ میں مسجد میں آ رہا ہوں, تم میری نیت کر کے رکھنا کہ میں ظہر کی فرض پڑھنے آ رہا ہوں, میں تو آ کے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے جڑ جاؤں گا, تو پہلے جا رہا ہے نا, میری بھی نیت تو کر کے رکھنا. تو نیت کے اندر نیابت نہیں ہے یہ بتلانا ہے. تو پھر اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نابالغ بچے کی طرف سے حج کے اندر والدین نیت کرے تو وہ نیت کو فقہا نے معتبر مانا ہے, तो वहाँ ये कहा जाएगा कि वो एक अमरे खारजी की वजह से, और वो अमरे खारजी क्या है कि नाबालिग के अंदर अदम तमीज़ की वजह से नियत का अहल न होना, इस बुनियाद के ऊपर नाबालिग बच्चे की तरफ से वालिदैन अगर नियत कर लेंगे तो उसका एतबार होता है। तो एक अमरे खारजी है हज का मसला, क्योंकि वो नाबालिग बच्चा है, अहल नहीं है, इसलिए उसके वालिदैन उसकी तरफ से नियत कर लेंगे तो अमरे खारजी की वजह से वो मोतबर है। वरना शरीयत के अंदर फी जाती ही कोई आदमी किसी की तरफ से नियत करे तो नियत का एतबार किया जाएगा नहीं। तीसरा मकसद समझो, एक आदमी नियत कर लेवे, दूसरे जुमले का मकसद, एक आदमी किसी नेक अमल की नियत कर लेवे और उजरे शरई की वजह से वो अमल न कर सके तो भी अल्लाह ताला उसको अजर सवाब दे देंगे। कोई आदमी नियत कर लेवे और उजरे शरई की वजह से वो अमल न कर सके तो भी अल्लाह ताला उसको अजर और सवाब अता कर देंगे। कितनी बड़ी बात है देख लो। इसीलिए हमेशा अच्छी नीयतें और अच्छे अजाइम कर लिया करो। अगर कोई उज्र और रुकावट आ गई और अमल न कर सके तो भी अल्लाह के यहाँ अजर तो मिल ही जाएगा। इसी को कहा जाता है नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, कि इसकी नीयत अमल से भी बेहतर है। कि भाई अच्छी नीयत कर ली, कोई उज्र आया और अमल नहीं कर सका तो अल्लाह उसको ऐसे ही अजर और सवाब अता कर देंगे। अब उसकी एक मिसाल देखो, आपने हदीस पढ़ी है, मसला भी पढ़ा है कि एक आदमी तंदुरुस्ती के ज़माने के अंदर और इकामत के ज़माने में जो नेक आमाल का अहतमाम करता है और सफ़र और बीमारी की वजह से वो नेक आमाल न कर सके, अब उसके दिल में जज्बा और इरादा तो है, काश के मैं तंदुरुस्त होता तो ये सारे आमाल करता, काश के मैं वतन में होता तो ये सारे आमाल करता, सफ़र की वजह से ये नवाफिल ये सुनन मैं अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ, बीमारी की वजह से मेरा जो तिलावत का मामूल है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही अजर दे देंगे, ऐसे ही उसको सवाब दे देंगे। देख लिया शरीयत मुताहरा के अंदर कि उज्र आया बीमारी का, उज्र आया सफ़र का, जिसकी वजह से वो आमाल सालेहा अंजाम नहीं दे सका तो भी अल्लाह ताला के यहाँ उसको अजर और सवाब मिलेगा। उस पर हजरत मुफस्सिरीन ने एक अजीब वाकया नकल किया है कि आदमी नियत करे और उज्र से अमल न करे तो सवाब का। कब? बनू इसराइल के एक नबी के ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप अपनी उम्मत के अंदर फुला आदमी को बशारत दे दो कि अल्लाह ने तुम्हारा सदका कबूल कर लिया। अब नबी ने उस आदमी को बुलाया और जो है कहा कि भाई तुमने कैसा सदका किया कि मेरे ऊपर बाकायदा वही आई है कि तुम्हारा सदका कबूल हो गया है। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा ये अल्लाह के नबी मैं गरीब फ़कीर आदमी, मैं क्या सदका खैरात करूं, आप क्यों मेरे साथ मजाक करते हैं, मैंने कोई सदका नहीं किया, कोई खैरात नहीं की। नबी ने कहा कि देखो मामला वही का है, ज़रूर तूने कोई सदका खैरात किया होगा, तू याद कर अल्लाह के यहाँ से बाकायदा वही आई कि तेरा सदका मकबूल है। वो गरीब आदमी सोचने लगा और फिर उसने नबी को कहा कि आज ये हुआ था कि एक जगह भूसी का ढेर था, यानी गल्ले के ऊपर से जो छिलका निकलता है ना, जैसे कि चावल के ऊपर से जो छिलका निकलता है कुस्की भूसी, तो कहा इस तरीके से गल्ले के ऊपर जो छिलका होता है उसका ढेर था। कहा मैं ढेर के ऊपर खड़ा हुआ था और मेरे दिल में एक इरादा आया, नियत आई, ए अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, काश के मैं कुछ मालदार होता और ये जो छिलके हैं और छिलकों का ढेर है وہ اگر واقعی گلہ ہوتا تو میں حقیقت میں تیرے راستے میں صدقہ کر دیتا. بس اس کے دل میں ایک نیت آئی, لیکن ایک غریبی اس کا عذر ہے کہ میں غریب ہوں, میرے پاس اتنا گلہ نہیں ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیا, اور باقاعدہ نبی کے اوپر وہی نازل ہوئی کہ تیرا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. اسی لیے دیکھو بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے. اونچے اونچے کام کی نیتیں کرو, ارادے کرو, عزائم کرو. اگر کر سکے تو ماشاءاللہ, نہ کر سکے تو ثواب تو مل ہی جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اسی لیے نیت اور ارادے اور عزائم بہت بڑے بڑے ہونے چاہیے. ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اپنے بعض اساتذہ کی رام کو دیکھا, وہ بیچارے مدرسے کی معمولی تنخواہ پر گزارا کرتے تھے. اس وقت ہمارے یہاں ڈابل مدرسے میں پنکھے نہیں تھے, دارالحکامہ میں جب تک ہم دورہ پورا کیا پنکھے نہیں تھے طلبا کے واسطے. تو وہ ہمارے ایک استاد تھے, وہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہیں. وہ ہمیشہ ہم کو کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے وے نے تو میں تمام طلبا کے لیے دارالحکامہ میں پنکھے لگوا دوں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اتنی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ایک نیت, ایک ارادہ. تو چاہے عمل نہیں کر سکے اس وقت, لیکن ثواب تو مل جاتا ہے, اجر مل جاتا ہے آدمی کو. اسی لیے ہمیشہ نیتیں بڑی بڑی رکھنے کی کہ اللہ مجھے پیسے دے وے تو اپنے تمام ساتھیوں کی دعوت کرا دوں, میں تمام ساتھیوں کو جو ہے یہ ہدیہ دے دوں, وہ ہدیہ دے دوں. یعنی واقعی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, خالی خالی بناوٹ وہاں چلتی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ نیت کا معاملہ ہے. تو صحیح دل سے آدمی نیت کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے. تو تیسرا مقصد کیا ہوا, اس بات کو بتلانا ہے کہ انسان اگر نیت کر لے اور اس کے بعد کوئی عذر شرعی آ جائے سامنے, اور واقعی کوئی عذر آ جائے اور وہ عمل نہ کر سکے, تو ابھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے. یہ سب جو ہے دوسرے جملے کے مقصد بتلائے گئے ہیں. اور آگے کیا بحث ہے اس کے بعد؟ ہاں, فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا, جو آدمی کی ہجرت دنیا کمائی کے لیے ہوگی تو وہ دنیا کو حاصل کر لے گا. جس شخص کی نیت دنیا کمائی کی ہوگی, دنیا کمائی کے لیے ہوگی تو وہ دنیا کو حاصل کر لے گا. ہجرت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. لغت میں اس کا معنی آتا ہے ترک وطن. ترک لغوی معنی تو مطلق ترک کے آتے ہیں, یہ وصل کی ضد ہے. کس کی ضد ہے؟ وصل. تو ہجرت کا معنی آتا ہے ترک, اور یہ ضد ہے کس کی؟ وصل کی ضد ہے. پھر بعد میں چل کر کے یہ لفظ عرف میں ہو گیا ترک وطن کے اوپر, ترک وطن پر یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا. اصطلاح کے اندر ہجرت کہا جاتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف, ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف, ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف, ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلا جانا, اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہو گئی. اب اس کے بعد اس کی بڑی بڑی دو قسمیں دیکھو. ہجرت کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں. نمبر ایک ہجرت عرفی, اور نمبر دو ہجرت حقیقی. ہجرت عرفی کس کو کہیں گے؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلا جاوے, یہ ہے ہجرت عرفی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے अपने वतन को छोड़ करके दूसरी जगह पर चला जावे, ये हिजरत उर्फी हुई। नंबर दो, हिजरत हकीकी ध्यान से समझो, अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ों को मना और हराम बनाया है उन चीज़ों को छोड़ देना ये हिजरत हकीकी है। ये हदीस आपने पढ़ी है, अय्युल हिजरत अफजल, सवाल किया गया है कि हिजरत में सबसे अफजल हिजरत कौन सी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतहजुर मा करीह रब्बुका औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, जो चीज तुम्हारे रब को पसंद ना हो उस चीज को छोड़ देना, ये है बेहतरीन हिजरत। हराम को छोड़ना, गुनाह को छोड़ना, नाजायज चीज को छोड़ना, यह है अफजल हिजरत हदीस पाक के अंदर। इसीलिए जो है इसको कहा जाएगा हिजरत हकीकी, यानी जो चीज अल्लाह ताला ने हराम की है, ममनू की है, मकरूह की है, उन चीजों को छोड़ देना ये हिजरत हकीकी कहलाती है। ये दो बड़ी बड़ी किस्में हो गए। अब और अकसाम समझो हिजरत के। नंबर एक, दारुल खौफ से दारुल अमान की तरफ हिजरत करना, दारुल खौफ से दारुल अमान की तरफ हिजरत करना, और उसकी दो मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने के अंदर पाई गई, मक्कतुल मुकर्रमा से हबशा की हिजरत और मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की हिजरत। ये दो मिसालें हैं उसकी। इसलिए कि मक्का दारुल खौफ था मुसलमानों के वास्ते, हर तरह का खौफ उनको लाहिक था, मक्का के लोग उनके दुश्मन बने हुए थे, इसीलिए अव्वलन हिजरत हबशा हुई फिर हिजरत मदीना हुई। नंबर दो, दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ, दारुल कुफ्र से दारुल अमान की तरफ हिजरत करना, दारुल कुफ्र से दारुल अमान की तरफ हिजरत करना, यानी एक इंसान कुफ्रिस्तान में रहता है, दारुल हर्ब में रहता है, और जो है वहाँ से हिजरत करके जहाँ उसको अमन व अमान नसीब हो ऐसी जगह के ऊपर चला जाए। अब जहाँ अमन व अमान नसीब हो उसका दारुल इस्लाम होना ज़रूरी नहीं, बहुत से ममालिक ऐसे होते हैं वो दारुल इस्लाम नहीं है लेकिन दारुल अमान है, वहाँ कोई आदमी हिजरत करके चला जावे। जैसे कि हमारे मुल्क भारत को दारुल अमान करार दिया है फुकहाए किराम ने, तो कोई आदमी दारुल कुफ्र से हिजरत करके चला जावे कहाँ पर, दारुल अमान। तीसरी किस्म समझो, दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करके चला जाना, दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करके चला जाना, यानी एक जगह पर कुफ्र ही कुफ्र है और जो है वहाँ से कोई आदमी हिजरत करके दारुल इस्लाम चला गया, तीसरी हुई। चौथी किस्म हुई, चौथी किस्म समझो, जिस जगह पर शरीयत के अहकाम पर अमल करना दुश्वार हो या नामुमकिन हो वहाँ से हिजरत करके ऐसी जगह पर चला जाना जहाँ इत्मीनान से शरीयत पर अमल कर सके। जिस जगह पर आप शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं कर सकते, इतनी पाबंदियाँ इतनी तंगियाँ हैं, अलानिया नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते, इकामत नहीं कह सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, तो आला आदमी शरीयत पर अमल ही नहीं कर सकता ऐसी जगह के ऊपर है, तो वहाँ से हिजरत करके चला जावे ऐसी जगह के ऊपर जहाँ शरीयत पर अमल कर सकता हो, ये भी एक हिजरत कही जाती है। पांचवी किस्म समझो, जहां फिस्को फुजूर और गुनाह का गलबा हो, ऐसी जगह से हिजरत करके नेकियों वाले इलाके में हिजरत कर जाना। एक ऐसी जगह पर आपका मकान है, ऐसी कॉलोनी में, ऐसी सोसाइटी के अंदर कि बदमाशों की कॉलोनी है, लबाड़ लोगों की कॉलोनी है, वहाँ अलानिया जो है फिल्म चलती है, औरतें बेपर्दा रहती है और खुल्लम खुल्ला गुनाह होते हैं, पूरा माहौल गंदगी का है। अब वहाँ पर आपके बच्चों की इस्लामी तालीम और तरबियत कैसी होगी, हालांकि सब मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। ये है गुनाह और मासियत के गलबे का माहौल। वहाँ से आप हिजरत करके चले गए ऐसी जगह के ऊपर जहाँ नेक साले लोग रहते हैं, जहाँ नेकियों का माहौल है, जहाँ तकवा का माहौल है, मस्जिद करीब है, मकतब है, मदरसा है, खानका है, मरकज है, अच्छा माहौल है, ऐसी जगह पर आप चले गए, ये भी जो है एक हिजरत कहलाती है। छठी किस्म, सातवीं किस्म, छठी किस्म, इंसान दुनियावी हलाल मुनाफे हासिल करने के लिए हिजरत करे। एक जगह आदमी रहता है, कारोबार नहीं चलता, ठंडा है बिजनेस, वहाँ पर आमदनी के जराए नहीं, अब क्या करे, भूखा मरेगा। चलो जहाँ कारोबार अच्छा मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, मुलाजमत मिल जाए, हिजरत करके चलो। हमारे लोग जितने भी यहाँ से बैरून में गए हैं फॉरेन कंट्रीज में, अक्सरुल अक्सर ने ये किस्म की हिजरत की है। जितने भी लोग हमारे यहाँ से गए हैं, आज जो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, कनाडा में है, मुल्कों मुल्कों में जो हमारे इलाके के लोग गए हुए हैं, उनमें से अक्सरुल अक्सर की बुनियादी नीयत ये थी कि वहाँ जाकर के डॉलर कमावे, पाउंड कमावे, बिजनेस करे, ज़्यादा रोजी रोटी कमावे, इस नीयत से वो गए हैं। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी है उसमें कि जो वहाँ दीन की निस्बत के ऊपर गए, इल्म की निस्बत पर गए, इमामत की मकतब पढ़ाने की निस्बत से गए, इस निस्बत से भी गए कुछ हजरात, लेकिन अक्सरुल अक्सर की नीयत इस किस्म की रही है। ये भी हिजरत की एक किस्म है। और एक सातवीं किस्म समझो, आखिरी ज़माने के अंदर लोग अपने अपने इलाकों से हिजरत करके मुल्क शाम चले जाएंगे। मिश्कात में आपने रिवायत पढ़ी थी ना, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम वाली, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में सवाल किया था। उस रिवायत में यह है ना कि लोग मशरिक से मगरिब की तरफ जमा कर दिए जाएंगे, तो दुनिया भर से लोग मुल्क शाम में जमा होंगे हिजरत करके। आखिरी दौर के अंदर ये होगा, हज़रत मेहदी, हज़रत ईसा, उस दौर के अंदर ये भी एक मुस्तकिल हिजरत है। तो ये मुख्तलिफ अकसाम है हिजरत के, उसके अंदर अहकाम मसाइल वाज़े हैं कि अगर आप लोग किसी ऐसे इलाके में फंस जाओ कि जहाँ शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं कर सकते, और ऐसी जगह पर आप दीन पर बाकी नहीं रख सकते, तो वहाँ से हिजरत करके निकल जाना फ़र्ज हो जाता है। ऐसी जगह पर आदमी चला जाए कि जहाँ जाकर के अपने दीन, ईमान, इस्लाम को, आमाल को बचा सके, ऐसी जगह पर हिजरत करके चले जाना उसके लिए फ़र्ज हो जाता है। और जहाँ नेकी का माहौल न हो, गुनाह का माहौल हो, बुराई का गलबा हो, ऐसे इलाकों से भी हिजरत करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि नेकियों के माहौल में जाकर के अपने और अपने औलाद के ईमान इस्लाम की हिफाजत कर लेवे। तो ये हो गया, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, जिस आदमी की हिजरत दुनिया की कमाई के लिए होगी तो वो दुनिया को हासिल कर लेगा। तो माशाल्लाह दुनिया कमा रहे लोग फॉरेन जाकर के, और जो है यहाँ एक मिलता है तो वहाँ सौ मिलते हैं, इसलिए कि पाउंड का भाव आजकल 100 रुपये चल रहा है, तहत्तर मिलते हैं, डॉलर तहत्तर के भाव पर चल रहा है, तो यूसी बुहा हासिल कर रहे हैं, कमा रहे हैं वो उसको जो इस नियत से गए वो। अब उसके बाद लफ्ज़ दुनिया को ज़रा सा समझ लो। बहुत से हजरात ने उसको दुनुवुन से मुश्तक माना है, फ़अला के वज़न के ऊपर दुनिया। दुनुवुन के माने आते हैं करीब होने के, और दना यदनु दुनुवन, दुनिया को दुनिया इसीलिए कहते हैं, नंबर एक आखिरत से करीब होने की वजह से, नंबर दो खत्म होने के करीब है। मिश्कात शरीफ में आपने रिवायत पढ़ी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कयामत, अगर वो मेरे पीछे आ रही है, हुजूर ने फरमाया वअना वसातु कहातैनी, इस तरह दो उंगली मिला करके भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और मेराज की रात में आपने दुनिया को बुड्ढी देखी थी, तो वो फना होने के करीब है। और हर इंसान के एतबार से तो उसकी मौत मन मात फकत कामत कयामत हो, उस एतबार से तो करीब ही है, करीब तर ही है हर एक के एतबार से। 60-70-80 साल की जिंदगी की हैसियत क्या। नंबर तीन, बाज हजरात ने इसको दना अतुन से मुश्तक माना है, जिसके माने आते हैं कमीना होने के, और दुनिया बड़ी कमीनी और घटिया है, किसी से उसने वफादारी की नहीं है, हर एक से बेवफाई करती है। और चौथा माना ये है कि आखिरत के मुकाबले के अंदर दुनिया बड़ी घटिया और बड़ी कमीनी है। ये हो गई लफ्ज़े दुनिया। अब उसके बाद क्या मौजू है, आगे देखिए रिवायत में, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इलमरअतिन यन्किहुहा, या अगर किसी औरत से निकाह करने की नीयत से हिजरत की तो निकाह कर लेगा। ये हो गया शान वुरूद से मुंतबिक जुमला। कुरान में शान नुजूल होता है और हदीस शरीफ में शान वुरूद हुआ करता है, शान वुरूद किया है। शान वुरूद के सिलसिले के अंदर एक रिवायत ये है जिसको इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजम कबीर के अंदर नकल किया है, हदीस नंबर 8540 मौजम कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने नकल किया है, रिजालुहु सिकात सनद सही से। हज़रत अबू वाइल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हम सहाबा में एक शख्स थे, उनका एक औरत से शादी करने का इरादा था, उन्होंने उस औरत को शादी करने का पैगाम दिया, तो उस औरत का नाम था उम्मे कैस। तो उस औरत ने शर्त लगाई कि जब तक आप हिजरत नहीं करेंगे मैं निकाह नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। तो इस मर्द ने, इस सहाबी ने उस औरत से निकाह करने के इरादे से बाकायदा हिजरत की। मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा की हिजरत क्यों की, उस औरत से निकाह और शादी करने की गर्ज से। बस अब लोगों के अंदर उनका नाम ही मशहूर हो गया, मुहाजिरे उम्मे कैस, मुहाजिरे उम्मे कैस, मुहाजिरे उम्मे कैस। इस तरह यानी उम्मे कैस के खातिर इन्होंने हिजरत की, उम्मे कैस के खातिर हिजरत की इन्होंने। देखिए हिजरत कितना ऊंचा अमल है, फइन्नल हिजरत तहदिमु मा काना कबला, हिजरत से पहले वाले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हिजरत की बरकत से। इतना मुबारक अमल है, कुरान की आयतों में हिजरत के फजाइल वारिद हुए हैं। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाही यजिद फिल अर्दी मुरागमन कथीरा वसा, हिजरत करने वालों के लिए फजाइल बाकायदा कुरान हदीस में वारिद हुए। लेकिन हिजरत किया निकाह और शादी की गर्ज से, एक गर्जे सही थी, फासिद नहीं थी। निकाह करना कोई गर्जे फासिद नहीं है कि भाई अपनी आदमी अपनी जरूरत पूरी करे, लेकिन हिजरत का मकसद जो होना चाहिए इलल्लाही व रसूलिही, वो उसमें फौत हो गया। इसीलिए हिजरत का अमल तो वजूद में आया, हिजरत तो हो गई, उम्मे कैस से निकाह भी हो गया, बीवी भी मिल गई, लेकिन नफ्से हिजरत के ऊपर जो अजर और सवाब होना चाहिए वो उसको उनको मिला नहीं, अजर से महरूम रहेगा वो आदमी। तो ये है औ इलमरातिहा, अगर किसी औरत से निकाह करने की नियत से हिजरत की तो निकाह हो जाएगा, औरत भी मिल जाएगी। अब हमारे यहाँ से जो लोग बेरून जाते हैं ना, उसमें से एक बहुत बड़े तबके की नियत निकाह भी हुआ करती है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, के बहुत से लोगों को अपने यहाँ की जो पासपोर्ट है ना, इंडियन पासपोर्ट, वो काले रंग की होती है, उसका टाइटल पुट्ठा काले रंग का, और उस पर तीन शेर का लोगो बना होता है, तो वो पासपोर्ट बहुत सो को पसंद नहीं है, उनको हरे कलर की लाल कलर की ऐसी पासपोर्टें पसंद है। लिहाजा कोई ऐसे कलर की पासपोर्ट वाली आ गई, चाहे वो बच्चों की माँ हो बुढ़ी हो, और तो भी लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। और जो है कोई अलग कलर की पासपोर्ट वाला आया, बुढ़ा आया और बच्चों का बाप आया, तो अभी यहाँ से जैसी चाहे ऐसी लड़की लेके चला जाता है। तो हमारे यहाँ से बिरून जाने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद लड़के और लड़कियों की, मर्द औरत की ऐसी है, वो निकाह की नियत से जाते हैं, तो निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन हिजरत करने का अजर और सवाब मिलता नहीं है। मैं तकरीरों में कहा करता हूँ लोगों को कि हमारे इलाके में जो है ना, बच्चा पैदा होता है तो अजान कहते हैं ना पैदाइश के बाद दाहिने कान में, और बाएं कान में इकामत कहते हैं। तो हमारे इलाके में अजान कहने के बाद एक जुमला कहते हैं, बेटा बड़े होकर फॉरेन जाना है, और बाएं कान में इकामत कहने के बाद कहते हैं रिश्तेदारों ही में शादी करनी है। ये दो बात हमारे इलाके में गोया के अजान इकामत के बाद कही जाती। इसलिए आप देखना हमारे इस इलाके में ये दो चीज में बड़ा इल्तिजाम है, बड़ा इल्तिजाम। जो तलबा मदरसे में पढ़ते भी है ना हमारे इलाके के, वो अरबी सौम में आते हैं ना, तब से ही दुआ चालू, अल्लाह मैं दौरे में आऊं वहां तक तो मेरा रिश्ता हो जावे, और फॉरेन में वो देखते रहते हैं रिश्तेदार में किसकी यहाँ अपने मुनासिब जोड़ा है, उसके नाम से दुआ सलातुल हाजा भी चालू हो जाती है। तो ये फरमाया औ इलम रातियां की हो हा। और अभी ये जमाने में इसका एक फितना नया है, फेसबुक के जरिए से रिश्ते, नेट के जरिए रिश्ते। ओ पंजाब में लड़का होगा, हरियाणा में होगा, और बारडोली में लड़की होगी, फेसबुक और नेट के जरिए कांटेक्ट हुआ, और अब ये शादी करके बारात जा रहे। भाई पंजाब से बारात बारडोली आई, हरियाणा से, ओ फेसबुक पर कांटेक्ट हो गया था, इसीलिए अब ये हिजरत करके हरियाणा तशरीफ ले जा रहे हैं, और जो है वो हरियाणा का दुल्हा यहाँ आ रहा है। बस निकाह तो हो जाएगा, लेकिन उसको जो अजर और सवाब होना चाहिए हिजरत का, तरके वतन का, वो मिलेगा नहीं। तो फरमाया फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैही, जिस नियत से, जिस जज्बे से, जिस इरादे से उसने नियत की है, जिस मकसद को सामने रख कर के हिजरत की है, उसके मुताबिक अल्लाह के यहाँ मामला होता है। दुनिया कमाई के लिए दुनिया मिलेगी, औरत हासिल करने के लिए औरत मिलेगी, और जो है हलाल तिजारत के लिए वो मिलेगी, लेकिन अजर और सवाब उसको उसी वक्त मिलेगा जब अल्लाह और रसूल के लिए हिजरत हो। अब देखो ये रिवायत जैसा कि आपको बतलाया गया था बुखारी शरीफ में सात जगहों पर आई है। सबसे पहले ये रिवायत है 54 नंबर के ऊपर, देखिए करीब तरीन जो है आ रही है 54 नंबर के ऊपर, देखिए खोलो 54 नंबर की हदीस, देखो वहां पर क्या है। हदीस शरीफ के जुमले देखो आखिर के अंदर, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अविमरअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। देख लिया तब ये, अब ये तौजीह जो यहाँ इस वक्त बतलाई जा रही है वहाँ किताबुल ईमान में फिर तकरार नहीं होगा, समझ लो। वहाँ क्या है जुमला, पहला जुमला देखो, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बराबर फिर तकरार हुई, फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बराबर। अब आगे क्या फरमाया, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अविमरअतिन यतज़व्वजुहा, बराबर। लेकिन आखिरी जुमला की आया जो यहाँ है, फहिजरतुहु इला मा हाजर इलै, यानी जहाँ अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत का बयान है वहाँ दोनों जुमलों के अंदर अल्लाह और रसूल सराहतन है, दोनों जुमलों में अल्लाह और रसूल क्या है, सराहतन है। और जहाँ दुनिया और औरत की तरफ हिजरत का तस्केरा है वहाँ पहले जुमले में इसमें सरी है और दूसरे जुमले में इसमें जमीर आया। देख लिया, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अविमरअतिन यतज़व्वजुहा, पहले में आया दुनिया और इमरा, बराबर। और दूसरे जुमले में जब आया फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह, वहां जमीर आ गए, सराहत नहीं आई। क्यों ऐसा हुआ इसकी हिकमत समझ लो अच्छी तरीके से। अल्लाह और रसूल की तरफ जब जमीर लौट रही थी तो ये मर्जा ही इतना प्यारा है, इतना अजमत वाला है, इतना मुतबर्रक है कि उसको जमीर के बजाय इसमें जाहिर लाना ही बड़ी फजीलत और बरकत की चीज है। क्योंकि नाम है अल्लाह का, नाम है अल्लाह के रसूल का, उसको जमीर, आदमी जमीर क्यों लाता है, अभी इसमें जाहिर आ गया था फिर अब बोलना बार बार क्यों बोले, बोलना भारी पड़ता है आदमी को। एक मर्तबा इसमें जाहिर में कोई चीज आ गई तो बार बार उसका इयादा न करना पड़े और बोलना बहुत तकर्रर भारी न पड़े, इसलिए जमीर लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तो जो मर्जा बन रहा है, जो मुकर्रर आ रहा है, वो क्या है, अल्लाह और रसूल का नाम, और वो है इतना प्यारा, इतना लजीज, इतना बरकत वाला, इतना नूरानियत वाला कि उसको जमीर में जिक्र करने के बजाय जाहिर में जिक्र करने में ही बड़ी खैर है, खैर है, भलाई है, लज्जत है, बरकत है, लुत्फ है, मजा है। हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, जब से ज़बां पे उनका नाम आने लगा तब से दुनिया ही में जन्नत का मजा आने लगा, यानी जब से जुबान पर अल्लाह का नाम आने लगा दुनिया ही में जन्नत का मजा। तो ये मर्जा लाने की चीज नहीं है, ये तो इसमें जाहिर लाने की चीज है। क्योंकि अल्लाह और रसूल का नाम है इसीलिए जो है उसको लज्जत के लिए, बरकत के लिए और हुसूल फायदे के लिए और अल्लाह रसूल के नाम के प्यार और मोहब्बत के खातिर उसको जो है जाहिरन जिक्र किया गया। इसीलिए कि इंसान की सबसे ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से, वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, और दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तो जो महबूब चीज होती है उसका तस्केरा भी महबूब होता है, और आदमी महबूब का तस्केरा जबान पर बार बार लाता है, इसीलिए वहां पर जो है जाहिर आया, जमीर नहीं आया। समझ गए बात को अच्छी तरीके से। जबकि औरत और दुनिया ऐसी चीज है कि वो बार बार बोलने की चीज नहीं है, दुनिया और औरत ऐसी चीज नहीं है कि उसको बार बार बोला जावे। इसलिए कि इज़ा तकर्ररा अल लिसानी तकर्ररा फिल कल्बी, जब इंसान जबान से जिस चीज का बार बार तकरार करता है वो दिल में बैठ जाती है, और दुनिया और पराई औरत कोई दिल में बिठाने की चीज नहीं है। इसीलिए जो है उसको जमीर के तौर पर लाया गया, एक मरतबा जरूरत थी तस्केरा कर दिया, और बार बार ये जबान पे लाने की चीज नहीं है। देखो दो चीज याद रखना, इंसान जिस चीज को बार बार बोलता है, जिस चीज को बार बार सोचता है और जिस चीज को बार बार देखता है वो दिल में बैठती है, जमती है वो चीज बार बार बोलने से भी। इसीलिए दुनिया की चीजें औरत बार बार बोलने की नहीं होती, इसलिए कुरान में किसी औरत का नाम सराहतन नहीं आया है कि ये बार बार बोलने की चीज नहीं है। आदमी कसरत से तिलावत करे तो कसरत से नाम थोड़ा ही आएगा। हजरत आयशा की शान में 20 आयतें नाजिल हुई, एक मरतबा भी हजरत आयशा का नाम नहीं आया। 28 औरतों के वाकयात कुरान में औरत का नाम सराहतन नहीं आया। हजरत मरियम का नाम सराहत आया एक अकीदे के अहम मसले को बयान करने के वास्ते कि वो बगैर बाप के माँ से पैदा हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस मसले के लिए हजरत मरियम का नाम सराहतन आया है, वरना 28 औरतों के वाकयात कुरान के अंदर है, किसी औरत का नाम कुरान के अंदर नहीं आया सिवाय मरियम के। तो कुरान की आदमी कसरत से तकरार करेगा, कसरत से पढ़ेगा तो औरतों के नाम थोड़े ही बोलते रहने के होवे। इसलिए शरीफ लोग मजमे के अंदर अपनी बीवियों के नाम बोलते नहीं, हमारी अहलिया, हमारी घरवाली, हमारी जो है शरीक हयात, लाइफ पार्टनर, और कोई लोग बहुत एजाज देंगे बीवी को तो कहेंगे हमारे होम मिनिस्टर यूं कहते हैं। इस तरीके से शरीफ लोग सराहतन नाम बोलते नहीं हैं। तो औरत ये कोई बार बार बोलने की चीज नहीं है, यही हाल दुनिया का भी, इसीलिए इसमें जमीर आई। अब क्या बहस बाकी रही? इख्तिसार, इख्तिसार क्यों? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 जगह रिवायत नकल की, अभी पहला मौका आपको बतला दिया, वहां पर लंबा जुमला लंबी पूरे पूरी रिवायत जिक्र की, और यहां देखो कि एकदम इख्तिसार के साथ जिक्र किया। हदीस नंबर 54, हदीस नंबर 2529, हदीस नंबर 3898, हदीस नंबर 5070, हदीस नंबर 6679, हदीस नंबर 6953, कई जगहों पर ये रिवायत आई और तफसीली रिवायत आई और शुरू में इख्तिसार कर दिया। हालांकि शुरू के अंदर तफसीली रिवायत आनी चाहिए ना, बाद में जाकर के यूं कहे कि अब रजब करीब है, सालाना करीब है, इसीलिए इख्तिसार से जिक्र करो। नहीं, शुरू साल में काई की उतावल है, काई की जल्दी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू में इख्तिसार कर दिया, सवाल पैदा होता है ना, तो उसके जवाब समझो। नंबर एक, पहला जवाब बहुत पक्का नहीं है लेकिन ये भी एक जवाब दिया है कि आपके उस्ताद मोहतरम इमाम हुमेदी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको इस तरीके से मुख्तसर ये रिवायत सुनाई थी, ये भी एक जवाब इसका दिया गया है। क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस किससे नकल की? इमाम हुमेदी रहमतुल्लाह अलैह से। ये भी एक जवाब दिया गया है कि उस्ताद मोहतरम ने एक मौके पर इख्तिसार से ही रिवायत सुनाई, इसीलिए इन्होंने भी इख्तिसार से नकल कर दी। नंबर दो, दूसरा जवाब समझो, इस हदीस शरीफ को शुरू किताब के अंदर जिक्र करने का मकसद बस एक है, नीयत का इस्तेहजार करा देना, मुअल्लिमीन को, मुतअल्लिमीन को, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, सबको नीयत का इस्तेहजार करा देना मकसूद है। नफ्से रिवायत सुनाना या नीयत के अहकाम और मसाइल को बतलाना ये कोई मकसूद भी जात चीज नहीं है, सिर्फ नीयत का इस्तेजार कराना मकसूद था। इसीलिए जितने जुमलों से नियत का इस्तेहजार हो जाता था इतने जुमले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाए, बाकी जुमले हस्फ कर दिए। समझ में आया दूसरा जवाब? तीसरा जवाब समझो, दरअसल एक मसला है, वो मसला किया है वो समझो कि हदीस के अल्फाज, हदीस शरीफ को मुख्तसर करना जायज है कि नहीं है, ये एक मसला है। हदीस शरीफ का इख्तिसार, जैसे कि आजकल बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई मुख्तसरन में रिवायत पेश कर देता हूँ आपको, बाकी रिवायत तो बहुत लंबी है, इख्तिसारन में मजमून जिक्र कर देता हूँ, वरना मजमून तो बहुत लंबा है। तो ये एक मसला है कि हदीस शरीफ में इख्तिसार जायज़ है कि नहीं है। हजरत मुहद्दिसीन अइम्मे उसूल हदीस के दरमियान में ये मुख्तलफी मसला है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान ये है कि हदीस शरीफ में इख्तिसार करना जायज़ है, तो इन्होंने अव्वल हदीस के ज़रिए अपने मसलक की तरफ इशारा कर दिया है कि मेरा मसलक और मेरा मौकिफ ये है कि मैं हदीस शरीफ के मजमून के अंदर इख्तिसार का कायल हूँ, उसकी तरफ इशारा कर दिया। अब ये एक मुस्तकिल बहस है कि भाई इख्तिसार के लिए क्या क्या शराइत है, क्या क्या हुदूद हैं, वो उसूल हदीस की बहस है कि चंद शराइत है, ऐसे नहीं कि आदमी अलग तब इख्तिसार कर डाले। बहरहाल हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि हदीस शरीफ के अंदर इख्तिसार जायज़ है। अपने रुझान और अपने मसलक को बतलाने के लिए आपने शुरू हदीस ही से ऐसा तर्ज अपनाया कि उससे मसलक वाज़े हो जाए। समझ में आ गई बात?